पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
आप सुन रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार। आइए सुनते हैं कंप्यूटर विभाग के विभागाध्यक्ष श्री रेशम लाल प्रधान से उनका व्याख्यान।
सपनों को हकीकत में बदलना नामुमकिन नहीं। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार।
हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेशम लाल प्रधान, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे। पर्सनल कंप्यूटर से शायद ही कोई अनजान होगा। आज के समय में सभी जगह यूज होता है यह कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। आज हम पर्सनल कंप्यूटर्स के विभिन्न आयामों के बारे में बात करेंगे। पर्सनल कंप्यूटर को एक ही समय में एक ही यूजर द्वारा सामान्यतः वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इत्यादि जैसे सामान्य उद्देश्य कार्यों हेतु उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर जो निजी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा छोटे छोटे जो पर्सनल कार्य होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग आदि कार्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, उपयोग की बात करें, आजकल पर्सनल कंप्यूटर के यूजर को ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों की अच्छी जानकारी हो सकती है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वह प्रोग्रामिंग में रुचि रखता हो, कंप्यूटर को प्रोग्रामों में लिखने में सक्षम हो। अतः पर्सनल कंप्यूटर के लिए अधिकतर सॉफ्टवेयर इसके प्रयोग की सहजता तथा यूजर फ्रेंडली होने को ध्यान में रखकर ही लिखे जाते हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर उद्योग निरंतर पर्सनल कंप्यूटर के नए उत्पादों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता रहे। इसके अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे सभी जगह पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है आज के समय में। इसके मुख्य एप्लीकेशंस हैं सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, वर्ड प्रोसेसर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब पेज मेकर, OpenOffice.org इत्यादि का प्रयोग कर कोई लेटर टाइप करना हो, डॉक्यूमेंट बनाना हो तो इसका उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इत्यादि का प्रयोग कर अकाउंट्स व्यवस्थित करना, ग्राफ बनाना, चार्ट एवं शीट प्रिपेयर करना, इसके लिए पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। MS PowerPoint का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने हेतु किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तथा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट सेवाएं जैसे कि www, FTP, टेलनेट इत्यादि का प्रयोग करना। सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशंस जैसे कि टैली एवं कस्टमाइज किए गए सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रयोग करना। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप इत्यादि का प्रयोग करना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं इन सभी एप्लीकेशंस के लिए पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन कराते हैं और हमारे उपयोग के जो भी कार्य हैं उन्हें सिद्ध करते हैं। आइए अब हम कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। वैसे तो कंप्यूटर्स के कई भाग होते हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनपुट यूनिट्स, CPU जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, एवं आउटपुट यूनिट्स। ये मुख्य रूप से तीन कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वे होते हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर्स को डेटा इनपुट कराते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वह भाग होता है जो इनपुट डिवाइसेस से प्राप्त निर्देशों को, सूचनाओं को, डेटा को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, तथा आउटपुट डिवाइसेस वे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से ये डेटा हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होते हैं। इनके बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे। अभी हम पर्सनल कंप्यूटर्स के विभिन्न भागों के बारे में बात करते हैं। इन तीन मुख्य हिस्सों के अलावा कंप्यूटर्स में कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। इन्हें हम इंटरनल एवं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के रूप में जान सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के विभिन्न भागों को समझने के लिए हमें इसके आंतरिक तथा बाहरी दोनों भागों को समझना होगा। पर्सनल कंप्यूटर का आंतरिक भाग से तात्पर्य वे भाग हैं जो CPU कैबिनेट के अंदर स्थापित होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, वीडियो कार्ड, पावर सप्लाई इत्यादि। इसी प्रकार CPU कैबिनेट के बाहर अगर हम बात करें, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की बात करें, तो फ्लैपी डिस्क ड्राइव, CD/DVD ड्राइव्स ये आगे की ओर स्थापित होते हैं। वैसे ही CPU कैबिनेट के पीछे के भाग कुछ महत्वपूर्ण कनेक्शंस होते हैं जो सीपीयू के अंदर के डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बाहरी पेरिफेरल डिवाइसेस से जोड़ते हैं। ये कंपोनेंट्स निम्न प्रकार से हो सकते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड, यूनिवर्सल सीरियल बस, पैरेलल पोर्ट, इथरनेट कार्ड, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव, रैम, सीपीयू, वीडियो कार्ड, पावर सप्लाई, सीडी डीवीडी ड्राइव इत्यादि। आइए इनके बारे में जानते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड भी कहा जाता है। यह पर्सनल कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी सर्किट बोर्ड होता है। कंप्यूटर के कई अन्य भाग भी मदरबोर्ड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड में एक या अधिक सीपीयू हो सकते हैं। इसके कुछ अतिरिक्त सहायक सर्किट भी होते हैं जो वास्तविक रूप से इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, जिनका काम सीपीयू मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट पेरिफेरल सर्किट के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है। इसमें मुख्य मेमोरी के साथ ही पावर ऑन होने के बाद कंप्यूटर के आरंभिक सेटअप के लिए सर्विसेज भी स्थापित होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है स्टोरेज डिवाइसेस। सीपीयू कैबिनेट्स के अंदर की अगर हम बात करें तो स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में दो तरीके के कंपोनेंट्स उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी स्टोरेज एवं सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं। प्राइमरी स्टोरेज को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। यह अत्यंत तेज स्टोरेज होता है जो सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेसिबल होता है। इसका प्रयोग तत्काल एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम तथा आवश्यक डेटा को स्टोर करने में होता है। पर्सनल कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में डी रैम, जिसे डायनेमिक रैम कहा जाता है, एवं एस रैम, जिसे स्टैटिक रैम कहा जाता है, का प्रयोग प्राइमरी स्टोरेज के रूप में होता है। मुख्य मेमोरी हार्ड डिस्क तथा ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज की अपेक्षा बहुत अधिक तीव्र गति से प्रोसेस होते हैं। यह आमतौर पर अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसा इसलिए है, जब भी पावर की चला जाता है या पावर की अनुपस्थिति में जो कंटेंट्स मुख्य मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी में स्टोर्ड हुए रहते हैं वे वहां से विलुप्त हो जाते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क मुख्य रूप से उपलब्ध होता है सीपीयू कैबिनेट में, जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को साधारणतः हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क कहते हैं। ये एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस होता है। जब भी हम कंप्यूटर में एक बार डेटा सेव कर लेते हैं हार्ड डिस्क में, तो पावर की अनुपस्थिति में या पावर रहे किसी भी स्थिति में हमारा डेटा वहाँ सुरक्षित रहता है। जब तक कि हम डेटा को वहाँ से डिलीट नहीं करेंगे, हमारा डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में सुरक्षित रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वह है कंप्यूटर पावर सप्लाई। डेस्कटॉप कंप्यूटरों में पावर सप्लाई एक बक्से के समान होता है, एक बॉक्स के समान होता है, जो कंप्यूटर के अंदर स्थापित होता है। इस बॉक्स को SMPS के नाम से जाना जाता है। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यह कंप्यूटर से जुड़े अथवा इसके अंदर प्रत्येक दूसरे भाग को विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है ताकि यह काम कर सके। पोर्टेबल कंप्यूटर की अगर हम बात करें, जैसे कि लैपटॉप्स में आमतौर पर एक बाहरी पावर अडाप्टर होता है जो AC करंट को DC में परिवर्तित करता है, तथा लैपटॉप में DC से DC परिवर्तन के थ्रू कन्वर्जन होता है। डेस्कटॉप की हम बात करें तो CPU के अंदर SMPS एक बॉक्स के फॉर्म में स्थापित रहता है। अगला हमारा कंपोनेंट्स है जो CPU में स्थापित होता है, वह है वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड की अगर हम बात करें, वीडियो कार्ड को ग्राफिक्स एक्सेलरेटर कार्ड, डिस्प्ले अडेप्टर, ग्राफिक्स कार्ड तथा अन्य कई नामों से जाना जाता है। यह पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग होता है, जिसका कार्य मॉनिटर पर इमेजेस एवं ग्राफिक्स का निर्माण तथा आउटपुट देना होता है। अगला कंपोनेंट्स है जो CPU कैबिनेट में स्थापित होता है, वह है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड कंप्यूटर की एक हार्डवेयर यूनिट है जो मुख्य बोर्ड पर एक्सपेंशन कार्ड की तरह लगाया जाता है। यह माइक्रोफोन से प्राप्त एनालॉग संकेतों को सिग्नल्स को डिजिटल के रूप में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। साथ ही साउंड कार्ड डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग के रूप में भी बदलकर स्पीकर को आउटपुट के रूप में भेजता है। स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो एक और डिवाइस होता है CPU कैबिनेट में जो एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में लगा होता है, वह है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एक फ्लैट सर्कुलर पॉलीकार्बोनेट डिस्क होती है जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है। अगला कंपोनेंट्स है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड को नेटवर्क अडाप्टर, लैन अडाप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग है, जिसे कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए या संपर्क स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में इंटरनेट एक्सेस करना है या किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना है और सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, तो नेटवर्क कार्ड अवश्य रूप से होना चाहिए। बिना नेटवर्क कार्ड के हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते या नेटवर्क स्थापित नहीं कर सकते। अतः आज के समय में जितने भी डेस्कटॉप लैपटॉप्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, सभी में नेटवर्क कार्ड लगा हुआ रहता है। यह फिजिकल लेयर अर्थात OSI प्रथम लेयर तथा डेटा लिंक लेयर और OSI द्वितीय लेयर के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्किंग माध्यम को फिजिकल एक्सेस प्रदान करता है तथा मैक एड्रेस के प्रयोग के माध्यम से निम्न स्तरीय एड्रेसिंग प्रदान करता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स की हमने अभी बात करी किस तरीके से नेटवर्क कार्ड फंक्शन करता है। तो हमें दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना है या एक मोबाइल को एक कंप्यूटर में जोड़ना है, एक लैपटॉप में जोड़ना है, तो आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में नेटवर्क कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाएंगे या इथरनेट पोर्ट के माध्यम से या वायरलेस पोर्ट के माध्यम से उपलब्ध रहता है। यूनिवर्सल सीरियल बस अगला कंपोनेंट्स है। यूनिवर्सल सीरियल बस को संक्षेप में USB कहा जाता है। USB को एक ही मानकीकृत इंटरफेस सॉकेट की सहायता से कंप्यूटर के डिफरेंट पेरिफेरल्स को जोड़ने हेतु डिजाइन किया गया है। हम अलग अलग कंपोनेंट्स को, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को USB के थ्रू CPU से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी सहायता से कंप्यूटर को बगैर पुनः बूट किए एक्सटर्नल डिवाइसेस को जोड़ा या हटाया जा सकता है। इस प्रकार प्लग एंड प्ले क्षमताओं की में वृद्धि होती है। इसकी अन्य सुविधाजनक विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि यह कम विद्युत खपत वाले डिवाइसेस को बिना किसी बाहरी पावर सप्लाई ऊर्जा के उपलब्ध कराता है। साथ ही इसकी सहायता से कई डिवाइसेस को बिना निर्माता विशिष्ट ड्राइवर इंस्टॉल किए कंप्यूटर से जोड़कर चलाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि डेटा एक्सेस करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए USB हमें एक पाथ प्रोवाइड कराता है। जब भी हम USB कनेक्टर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को CPU से कनेक्ट करते हैं, तो हम उसके माध्यम से डेटास को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मुख्य पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो CPU कैबिनेट्स के अंदर स्थापित होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्सनल कंप्यूटर्स के तीन मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट यूनिट्स, CPU एंड आउटपुट यूनिट्स। तो अभी हमने CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कैबिनेट होता है उसके अंदर स्थापित विभिन्न घटक, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात करी। अभी कुछ जो इनपुट यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो मुख्य आउटपुट डिवाइस होता है हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज होता है, वह है मॉनिटर। मॉनिटर को तकनीकी रूप से विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। इसे कंप्यूटर डिस्प्ले भी कहा जाता है। मॉनिटर विद्युतीय यंत्र का एक भाग है जो कंप्यूटर जनित इमेजेस को बिना इनका स्थायी रिकॉर्ड रखे प्रदर्शित करता है, शो करता है। यह सामान्यतः कैथोड रे ट्यूब के रूप में होते हैं या TFT LCD डिस्प्ले की भांति यूज होते हैं। मॉनिटर्स की अगर हम बात करें तो कलर्स के बेसिस में ये तीन प्रकार से होते हैं। मोनोक्रोम मॉनिटर्स होते हैं, ग्रे स्केल मॉनिटर होते हैं, कलर मॉनिटर होते हैं। टेक्नोलॉजी के बेसिस में हम बात करें तो मॉनिटर्स मुख्य रूप से तीन प्रकार से होते हैं, कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे कहा जाता है, एवं LED लाइट एमिटिंग डायोड्स। ये तीन विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसके रूप में मॉनिटर्स हमारे पास उपलब्ध होता है। आज के समय में मार्केट्स में ज़्यादातर कंप्यूटर्स के जो मॉनिटर्स हैं वो LCD या LED टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं। LED मॉनिटर्स LCD मॉनिटर्स के कंपेयर में अपेक्षाकृत कॉस्टली होते हैं, बट अगर हम पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो LED मॉनिटर्स में LCD मॉनिटर की अपेक्षा बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी होती है। साथ ही इसमें रिजोल्यूशंस भी काफ़ी अच्छी रहती है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो पर्सनल कंप्यूटर्स में होता है और मॉनिटर्स के द्वारा ही हम जो भी कार्य CPU में परफॉर्म करते हैं वो हमें दिखाई देता है। इनपुट डिवाइसेस की बात करें जो पर्सनल कंप्यूटर का आवश्यक पार्ट होता है वह है माउस एवं कीबोर्ड। माउस एवं कीबोर्ड की बात करें तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। यह अपने सपोर्टिंग सरफेस के सापेक्ष द्विविमीय गति की पहचान कराते हुए एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। तो माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। हम कंप्यूटर स्क्रीन में कर्सर को मूव करा के किसी भी फाइल को ओपन करना है, किसी भी डेटा को किसी पर्टिकुलर लोकेशन में प्लेस करना है, तो वो हम माउस के माध्यम से कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है, मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, एवं वायरलेस माउस होता है। मैकेनिकल माउस कुछ 10-15 साल पहले की बात करें तो जो माउस उपयोग में लाए जाते थे वे मैकेनिकल माउस होते थे। वहाँ पर माउस के नीचे एक बबल लगा हुआ रहता था जो सरफेस में मूव करता था, तो कर्सर हमारी स्क्रीन में मूव होता था। ऑप्टिकल माउस की हम बात करें, आज के समय में जो माउस हम यूज़ करते हैं वे ऑप्टिकल माउस होते हैं। आप देखेंगे माउस के नीचे रेड कलर का लाइट फ्लैश होता है जो लेजर लाइट टाइप से होता है, वो सेंसर होता है, सरफेस को सेंस करता है और जब हम माउस को मूव कराते हैं तो उसी के आधार पर कर्सर हमारे मॉनिटर में मूव होता है। और एक होता है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस आप सभी समझ सकते हैं, जो बिना वायर का माउस होता है जो हम अपने साथ कहीं भी ला और ले जा सकते हैं, वो वायरलेस माउस होता है। कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है, ये एक टाइपिंग इनपुट डिवाइस होता है। ध्यान दीजिएगा, माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहा जाता है और कीबोर्ड को टाइपिंग इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर का कीबोर्ड एक पेरिफेरल है, एक्सटर्नल डिवाइस होता है और बेसिकली टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट या कैरेक्टर्स कंप्यूटर्स में इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। इसमें कई प्रकार के की लगे हुए रहते हैं जिन्हें हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फंक्शन कीज़। F1 से लेकर F12 तक 12 प्रकार के फंक्शंस कीज़ होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि F2 सर्च करने के लिए यूज होता है, F4 एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए यूज होता है, F9 प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल कीज़ होते हैं। एरोज़ कीज़ होते हैं, 4 प्रकार के एरोज़ कीज़ होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 0 से लेकर 9 तक के न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं। एंड स्पेशल सिम्बॉलिक कीज़ होते हैं जिसमें आपके प्रिंट, एस्केप, एंटर इत्यादि जो वर्ड छपे हुए रहते हैं हमारे कीबोर्ड में, इन्हें स्पेशल पर्पज़ कीज़ कहा जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की कीज़ होते हैं जो कंप्यूटर्स में डेटा प्रविष्ट करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो आज हमने देखा कि पर्सनल कंप्यूटर्स में कितने प्रकार के बेसिक कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से हमने 3 श्रेणी में समझा। पहले इनपुट डिवाइसेस जिसमें माउस एवं कीबोर्ड्स होते हैं जिनके माध्यम से हम डेटा एंटर करते हैं। फिर हमने CPU के बारे में बात करा। CPU में हमने देखा कि इसके अंदर कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमने मदरबोर्ड, डिस्प्ले कार्ड, रैम, CD/DVD, रोम इत्यादि डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करा। एवं आउटपुट डिवाइस की भी हमने बात करी, जिसमें मॉनिटर्स के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमारे साथ होता है पर्सनल कंप्यूटर्स में, जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के डेटा एवं निर्देशों को देखने एवं इंटरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अगले व्याख्यान में हम कंप्यूटर्स के इवोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।
ज्ञान विज्ञान सत्य शिव सुंदर सबका हो आरोहण, प्रेम अहिंसा विद्या सर से विकसित जीवन दर्शन।